ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निधिनामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। भीष्म पंचक के उपलक्ष पर आयोजित किए जाने वाले कृष्ण कथा के चौथे दिन पर आप सबका स्वागत है। दामोदर लीला की चर्चा चल रही है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मधुर माल बाल लीलाओं को प्रकट करते हुए एक मटके को तोड़ डाला जिसमें कि माता यशोदा मंथन कर रही थी, और इस मटके को तोड़ने के बाद डर के मारे कहीं दूसरी जगह चले गए। एक उखल को उल्टा करके उसके ऊपर खड़े होकर दही और मक्खन आदि स्वयं भी खा रहे थे, साथ साथ बंदरों को भी बांट रहे थे। जब माता यशोदा उस कमरे में आई और देखा कि मटका टूटा पड़ा है, दही इधर उधर फैला हुआ है और श्री कृष्ण नहीं है, तो उन्होंने जान लिया कि ये श्री कृष्ण का ही काम है। श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते गई और एक कमरे में पाया श्री कृष्ण को, बंदरों को मक्खन और दही बांटते हुए। श्री कृष्ण ने माता यशोदा को देखा, डर के मारे कूद पड़े उखल के ऊपर से और भाग गए। माता यशोदा उनके पीछे दौड़ती हुई गई। अंततः श्री कृष्ण को माता यशोदा ने पकड़ ही लिया। और सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जब माता यशोदा ने ऐसे पकड़ लिया तो श्री कृष्ण डर गए, और जैसे माता यशोदा के चेहरे को देखा और विशेष करके उनके हाथ में छड़ी देखी तो इतने डर गए कि अपने आप को अपराधी मानने लगे। कृतागसम तम प्ररुदंतम अक्षिणी कशंतमंजन मशिनी स्व पाणिना। अपने आप को कृत आगसम कि मैं एक अपराधी हूं ये मानते हुए एक रोने के भाव से प्ररुदंतम अक्षिणी कशंतम अपने आंखों को अपने दोनों करकमलों से में हाथ लगाते हुए श्री कृष्ण बहुत ही पीड़ित और दुखी और डरे हुए लग रहे थे। उनके आंखों में जो अंजन लगाया हुआ था वो अब बिखर गया, और ये सारा अंजन जो है उनके चेहरे पे बिखर गया। माता यशोदा ने श्री कृष्ण के डरे हुए चेहरे को देखा और सोचा कि मेरा बच्चा इतना डर गया है। अपनी छड़ी उन्होंने फेंक दी लेकिन डांटना शुरू किया। वैसे माता यशोदा केवल डांटने का एक नकल कर रही थी क्योंकि वात्सल्य स्नेह इतना था कि वो नहीं चाहती थी कि श्री कृष्ण को कोई हानि पहुंचे, परंतु वो ये अवश्य चाहती थी कि श्री कृष्ण ऐसे कोई उत्पात न करे। और माता यशोदा ये भी सोच रही थी कि मुझे कुछ तो दंड देना चाहिए, नहीं तो ये लड़का बार बार ऐसे ही कुछ करेगा, और यदि मैंने इस समय उसको बांधा नहीं इस उखल से तो फिर शायद डर के मारे वो कुछ अपने आप को हानि पहुंचा दे। तो माता यशोदा ऐसे सोच रही थी। वैसे ब्रह्मा जी, शिव जी और ब्रह्मांड के जितने भी बड़े बड़े देवता गण हैं, लोकपाल हैं, वो सब हृदय पूर्वक, कभी कभी भय पूर्वक स्तुति करते हैं भगवान श्री कृष्ण की। बहुत सारे योगियों के द्वारा वो जाने तो नहीं जा सकते हैं, यहां तक कि शिव जी और ब्रह्मा जी भी उनको पूरी तरह से पहचान नहीं सकते हैं। सतत शिव जी और ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते रहते हैं और वही भगवान श्री कृष्ण जो कि ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा पूजित होते हैं, उन्हीं को आज माता यशोदा डांट रही हैं, बल्कि हाथ में छड़ी लेकर उनके पीछे पीछे जा रही हैं। कितना अद्भुत दृश्य है ये। इस चित्र को जबकि माता यशोदा डांट रही हैं श्री कृष्ण को और श्री कृष्ण डर गए हैं, ये वृंदावन की एक बहुत विशेष लीला है। क्योंकि ऐसी भावना जबकि भक्त श्री कृष्ण को इस तरह से डांटे और भगवान डर जाए, ये और कहीं नहीं पाया जा सकता है। भगवान की ये बहुत विशेष लीला है। वैसे भगवान जब धरातल पर प्रकट होते हैं तो विभिन्न योनियों में प्रकट होते हैं। वैसे तो हर अवस्था में भगवान भगवान ही रहते हैं, चाहे वो पशु योनि में प्रकट हो जाएं, चाहे वो जलचर योनि में प्रकट हो जाएं, चाहे वो मनुष्य योनि में प्रकट हो जाएं, भगवान तो भगवान ही रहते हैं। फिर भी भगवान के इन लीलाओं को समझना अत्यंत कठिन है। इसलिए कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं, जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्या कर्तुरात्मनः नृषु यादहस्यु तत् अत्यंत विडंबनम्। वो कहती हैं कि हे कृष्ण, कभी कभी आप जन्म लेते हो जलचर प्राणियों में, कभी कभी जन्म लेते हो मनुष्य योनि में, यादहसु अर्थात जलचर प्राणी, नृ शिशु, कभी नृ समाज में, मनुष्य समाज में, ऋषि शु, कभी ऋषियों के समाज में आप प्रकट होते हो, और कभी कभी पशुओं के समाज में भी प्रकट होते हो। आप वैसे अजन्मे हो फिर भी आप जन्म लेते हो इन योनियों में, साथ साथ में आप कर्म करने के लिए बाध्य नहीं है फिर भी आप तरह तरह के कर्म करते हो इन योनियों में जन्म लेने के बाद। तद अत्यंत विडंबनम, ये वास्तव में बड़ी विडंबना की बात है, विस्मयकारी बात है, संभ्रमित करने वाली बात है, मोहित करने वाली बात है। कि वो भगवान जो अजन्मा हैं जन्म लेते हैं, वो अकर्तु हैं कर्म करने के लिए बाध्य नहीं है फिर भी कर्म करते हैं। तो जितने भी ये समस्त विस्मयकारी भगवान की लीलाएं हैं उनमें से ऐसे माना जाता है कि भगवान की नर लीला ये सबसे ज्यादा मधुर होती है, क्योंकि भगवान इतने ऐश्वर्यशाली होने के बाद भी एक साधारण मनुष्य के समान लीला करते हैं। हाँ, जब मत्स्य अवतार लेते हैं तो एक मत्स्य के समान या मछली के समान व्यवहार करते हैं, जल में तैरते हैं, फिर भी जो एक मिठास है वो नर लीला में होता है। तो इन्हें माधुर्य लीला कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की नर लीला, मनुष्य योनि में प्रकट होकर लीला करना, ये माधुर्य लीला कहलाती है। और यदि नर लीला में भगवान श्री कृष्ण अपने ऐश्वर्यों को भी प्रदर्शित करें फिर भी उनकी लीलाएं मधुर ही रहती हैं और माधुर्य लीला ही कहलाते हैं। कई लोगों का कथन है कि भगवान की नरलीला तब मधुर होती है या माधुर्य कहला सकती है जबकि वो अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन नहीं करते हैं, परंतु यह सही नहीं है। भगवान जब अपने नरलीला प्रकट करते हैं जैसे कि उन्होंने वृंदावन में किया तो अवश्य मुग्ध करने वाली ये बहुत लीलाएं होती हैं, जैसे कि जब उन्होंने एक साधारण बच्चे की तरह माखन चोरी किया या बादल के गरजने के आवाज से रोना शुरू कर दिया और अपने माता यशोदा के गोदी में भाग के चले गए, तो जैसे साधारण बच्चे सबको मुग्ध करते हैं, आकर्षित करते हैं अपने कार्यों से, वैसे श्री कृष्ण भी कर रहे थे, परंतु साथ साथ श्री कृष्ण ने अपनी नरलीला वृंदावन में करते हुए अपने ऐश्वर्य का भी प्रदर्शन किया। नरलीला भाव में एक शिशु की भूमिका निभाते हुए वो रोते थे, डर जाते थे, परंतु कभी कभी अपना ईश्वर भाव भी प्रकट करते थे, जैसे कि जब पूतना का स्तनपान करते हुए उन्होंने श्री पूतना की हत्या कर दी, का वध कर दिया। शकटासुर जैसे भयंकर असुर का भी वध किया जबकि श्री कृष्ण की आयु केवल 3 महीने की थी। साथ साथ में उन्होंने ब्रह्म विमोहन लीला में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को विमोहित कर दिया। और फिर आगे चल के जैसे दामोदर लीला में हम देखेंगे, उन्होंने अपने ईश्वर भाव का प्रदर्शन किया जबकि जिस रस्सी से माता यशोदा उनको बांधना चाहती थी वो 2 उंगली कम पड़ रही थी, जितने भी रस्सियां क्यों ना इस्तेमाल करें माता यशोदा। तो क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपने ईश्वर भाव को या अपने ऐश्वर्य को प्रदर्शित किया वृंदावन में नरलीला करते समय, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान की लीलाएं कम मधुर हो गईं, बल्कि वृंदावन के निवासियों के लिए इनकी लीलाओं का माधुर्य और भी बढ़ जाता है। यदि ऐसे कहा जाए कि नर लीला तब माधुर्य कही जाती है जबकि ऐश्वर्य का प्रदर्शन नहीं होता है, तो फिर हमें यह मानना पड़ेगा कि एक दुनिया का साधारण बच्चा भी वो माधुर्य लीला करता है, क्योंकि उसके भी कार्य जो होते हैं वो मुग्ध करने वाले होते हैं। मुग्धता जो है, मुग्ध कराने वाले जो एक गुण है भगवान की लीला में, वो एक साधारण एक बच्चे के अंदर भी होते हैं। एक छोटे से बच्चे के कार्यों को देखकर भी सभी लोग मुग्ध हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, परंतु भगवान की लीला माधुरी इसलिए कहलाती है कि उनके अंदर मुग्धता मौग्धता के गुण के अलावा ऐश्वर्य का भी गुण होता है। इतने बड़े व्यक्ति हैं, वो स्वयं भगवान हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, इतना होते हुए भी वो ऐसे मौग्धता का प्रदर्शन करते हैं जैसे कि एक छोटा बच्चा करता है। ये आश्चर्य प्रदान करने वाली बात है, इसलिए ये माधुर्य लीला कहलाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं में हम देखते हैं कि नरलीला भाव होता है, साथ साथ ईश्वर भाव भी होता है, दोनों होते हैं भगवान के नरलीला में, और फिर भी भगवान के लीला माधुर्य लीला ही कहलाते हैं। भगवान की लीला तो मधुर है, परंतु जब भक्त अलग अलग भाव में होते हैं उनके ऊपर भगवान के ऐश्वर्य के प्रदर्शन का असर अलग अलग पड़ता है, प्रभाव अलग अलग पड़ता है। जैसे कि जब कुरुक्षेत्र पे के युद्ध भूमि पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखलाया, तो उस समय अर्जुन का जो सख्य भाव है वो शिथिल हो गया, कमजोर हो गया, मिश्रित हो गया एक ऐश्वर्य भाव से। ऐसे भगवान के ऐश्वर्य के प्रदर्शन से अर्जुन का भाव बदल गया, सख्य भाव से एक ऐश्वर्य का भाव प्रकट हो गया अर्जुन के हृदय में। उसी तरह से जब श्री कृष्ण और बलराम वृंदावन छोड़कर मथुरा आए थे और उन्होंने कंस आदि जैसे भयंकर असुरों का वध किया और माता देवकी और वसुदेव ने ये सब देखा अपनी आंखों से, तो उनका वात्सल्य भाव भी कमजोर हो गया और वो सोचने लगे कि ये हमारे पुत्र कैसे हो सकते हैं, ये तो स्वयं भगवान हैं। तो इसीलिए वसुदेव देवकी अर्जुन इत्यादि वो वृंदावन के भक्तों की श्रेणी में नहीं माने जाते हैं, वो थोड़े निम्न श्रेणी के भक्त माने जाते हैं वृंदावन के भक्तों की तुलना में। वैसे जब ऐश्वर्य का प्रदर्शन होता है उस समय यदि भगवान के भक्तों के हृदय में भगवान के प्रति जो अपना एक पहले वाला भाव है वो यदि बदलता नहीं है तो फिर वो केवल वृंदावन में होता है। जब श्री कृष्ण गायों को चराने के बाद अपने गांव में लौट के आते, ग्वाल बालों के साथ में लेकर गायों को साथ में लेकर, तो कई बार ब्रह्मा जी शिव जी इंद्रदेव इत्यादि वहां पर आके भगवान की उपासना करते, आरती इत्यादि उतारते, और कई बार ये आरती की जो सामग्री है वो वहां पर पड़ी रहती, और ये ग्वाल बाल मित्र जो हैं श्री कृष्ण के इन सब चीजों को देख लेते, फिर भी उनके मन में जो एक सख्य भाव था कि श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं ये कमजोर नहीं हुआ, बल्कि वो सोचते थे कि देखो कितने खुशी की बात है कि हमारा मित्र जो है देवादि देव है, देवों के भी देव है, वो हमारे मित्र है, देखो कितनी अच्छी बात है। लेकिन है ये हमारा मित्र, और इन खबरों को गोपियां भी वृंदावन में सुनती थीं, लेकिन गोपियों के हृदय में जो एक श्रृंगार रस का भाव था कि श्री कृष्ण हमारे प्रेमी हैं वो कम नहीं हुआ, बल्कि वो भी सोचने लगे कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे प्रेमी जो हैं वो स्वयं भगवान हैं, देवताओं के द्वारा पूजित हैं। उसी तरह से माता यशोदा को भी जब पता चलता कि ऐसे देवतागण आए हैं और मेरे पुत्र की उपासना इस तरह से कर रहे हैं, तो उनके मन में भी जो वात्सल्य भाव था वो कम नहीं हुआ, वो बढ़ गया। तो ये अंतर है वृंदावन और अन्य स्थानों में। वृंदावन में नरलीला भाव और ईश्वर भाव दोनों भगवान प्रकट करते हैं, और दोनों के प्रकट करने के बाद जो भावना या रस वृंदावन के निवासियों के हृदय में है वो बिल्कुल तनिक भी बदलता नहीं है। बल्कि दूसरी जगह मथुरा में, द्वारका में, कुरुक्षेत्र में इत्यादि भक्तों का भाव बदल जाता है, जबकि भगवान श्री कृष्ण अपने ऐश्वर्य भाव को प्रकट करते हैं। तो इससे हम जान सकते हैं कि वृंदावन के भक्तों में और द्वारका मथुरा के भक्तों में अंतर होता है। तो भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य के प्रदर्शन के कारण जो भगवान द्वारका में जब रहते हैं और मथुरा में रहते हैं तो वो अपने दिव्यता को, अपने भगवत्ता को सदैव पहचानते हैं, और उनके भक्त भी सदैव जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है। थोड़ा बहुत माधुर्य भी होता है वहां पर, माधुर्य और ऐश्वर्य दोनों का मिश्रण पाया जाता है और द्वारका में और मथुरा में। परंतु वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के भक्त जो हैं, कभी कभी जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान हैं, कभी नहीं जानते हैं। भले वो जानते हो या न जानते हो, लेकिन उनके लिए श्री कृष्ण अपना लाडला पुत्र है, मित्र है, प्रेमी है इत्यादि, ये स्पष्ट है। परंतु अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या जैसे मथुरा में और द्वारका में श्री कृष्ण अपने भगवत्ता को सदैव जानते हैं, वो क्या वृंदावन में भी जानते हैं? साधारण शब्दों में यदि यह प्रश्न पूछा जाए कि वृंदावन में क्या हर समय श्री कृष्ण जानते हैं कि मैं भगवान हूं, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। वृंदावन के भक्त नहीं जानते हैं या कभी जानते भी हैं, परंतु क्या कृष्ण जानते हैं? अब यह पूछा जा सकता है कि अरे ये तो भगवान है, कैसे नहीं जानेंगे। तो यदि ये भगवान हैं और अपने हैं उससे ही और अपने भगवत्ता को भी हर समय जानते हैं कि मैं भगवान हूं, तो फिर माता यशोदा ने जब छड़ी पकड़ी हाथ में और उनके पीछा किया तो श्री कृष्ण डर कैसे गए? यदि कोई अपने आप को बहुत शक्तिशाली जान लेता है तो वो क्या डरेगा? डर कब होता है? डर उस समय होता है जब हमसे ज्यादा शक्तिशाली कोई व्यक्ति हमारे सामने हो, या कोई ऐसी शक्ति हो हमारे सामने जिसका सामना हम नहीं कर सकते हैं, हम असमर्थ हैं करने के लिए। जब हमसे निम्न श्रेणी की शक्ति कोई सामने है तो हम डरते नहीं हैं। तो श्री कृष्ण जब डर गए हैं तो इसका मतलब है कि वो भूल चुके हैं कि वो भगवान है, नहीं तो कैसे वो डर जाते? भगवान कौन होते हैं जो सर्वशक्तिमान होते हैं? अब सर्वशक्तिमान भगवान डर जाए, कैसे हो सकता है? ये तभी संभव हो सकता है जबकि वो भूल जाए कि मैं भगवान हूं। या तो फिर तर्क किया जा सकता है कि भगवान वास्तव में डरे नहीं, वो तो भगवान है, कैसे डर सकते हैं। इसलिए जब माता यशोदा उनका पीछा कर रही थी छड़ी लेकर, वो केवल डरने का ढोंग कर रहे थे, नकल कर रहे थे, ऐसा कोई कह सकता है? ऐसे भी तर्क प्रस्तुत किया जा सकता है। परंतु श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है कि यदि श्री कृष्ण केवल ढोंग कर रहे थे भयभीत होने का, तो जब कुंती महारानी श्रीमद भागवत के पहले स्कंद में प्रार्थना करती हैं और स्तुति करती हैं श्री कृष्ण की, तो फिर वो क्यों कहती कि श्री कृष्ण डर गए हैं, और ऐसे डरे हुए कृष्ण को देखकर या उनके बारे में सोचकर मैं विमोहित हो रही हूं, मैं भ्रमित हो रही हूं। तो ऐसे कुंती महारानी को संभ्रमित होने का क्या कारण था? यदि श्री कृष्ण केवल ढोंग कर रहे हैं भयभीत होने का, तो कुंती महारानी भ्रमित नहीं हो जाती, वो केवल हंसती कि हां बच्चा है ढोंग कर रहा है। परंतु कुंती महारानी के हृदय में जब ये भावना हुई कि मैं तो संभ्रम में पड़ गई हूं, ये तो बड़ा विस्मयकारी एक कार्य है भगवान का कि भगवान श्री कृष्ण डर गए हैं, तो कुंती महारानी संभ्रम में पड़ गई हैं। और कुंती महारानी कोई साधारण भक्त नहीं है, वो भी वात्सल्य भाव में एक माता तुल्य है श्री कृष्ण के। जैसे उस दिन हम वात्सल्य रस में भक्तों के क्रम या उनकी श्रृंखला को देख रहे थे, कुंती महारानी का 7वां नंबर आता है, कोई कम नहीं है। तो जब कुंती महारानी ऐसे विडंबना में पड़ गई है, तद अत्यंत विडंबनम पहले वाले श्लोक में तो कही चुकी हैं, और अब उसी की बाद वाला श्लोक 31 में कुंती महारानी बताती हैं कि वास्तव में मैं भ्रमित हो चुकी हूं, इस चित्र को अपने मन में रख के कि कैसे श्री कृष्ण डर गए हैं। गोप्या ददे त्वयि कृतागसी धाम तावत् याते दशाश्रुकलिलांजन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य सामाम विमोहयति भीरपि यद्विभेति। कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं कि हे कृष्ण, गोपी आददे, गोपी अर्थात माता यशोदा ने तावद जिस समय एक रस्सी पकड़ ली हाथ में, क्योंकि त्वयि कृतागसी, क्योंकि आपने कुछ उत्पात कर दिया था, कोई अपराध कोई गलती कर दी थी, गुनाह किया था, तावत तो उस समय याते दशा, आपकी जो दशा थी उस समय उसको मैं याद कर रही हूं। जब माता यशोदा ने रस्सी पकड़ ली आपके गुनाह करने पर, आपकी जो दशा हुई उसका मैं स्मरण कर रही हूं। क्या हुई आपकी दशा? अश्रु कलिला, आपके आंखें अश्रु से आंसुओं से भर गए। अंजन संभ्रमाक्षम, जो अंजन है काजल इत्यादि है जो आपकी आंखों में लगा हुआ है, वो सारे आंसुओं के कारण वो बिखर चुका है। वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य, आपके सारे चेहरे पर सुंदर मुखारविंद पे ये काजल फैल गया है। भय भावनया स्थितस्य, और आप भयभीत होकर वहां पे खड़े हैं। सामाम विमोहयति, और मैं बिल्कुल विमोहित हो गई हूं कि ये कैसे संभव है कि आप वास्तव में डर गए थे। भीर अपि यद् बिभेति, जबकि मूर्तिमान भय आपसे भयभीत होता है, और आप इस गोपी माता यशोदा के छड़ी के सामने, रस्सी के सामने डर गए हैं। ये कितने विडंबना की बात है। तो कुंती महारानी के उस उदाहरण को ध्यान में रखते हुए आचार्यों ने बतलाया है कि हमें जान लेना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण वास्तव में भयभीत हो गए थे, और यदि वो वास्तव में भयभीत हो गए थे इसका मतलब है कि वो भूल गए थे कि वो भगवान है। वृंदावन में भगवान के भक्त भी भूल जाते हैं कि ये भगवान है, क्योंकि यदि वो नहीं भूल जाएंगे तो फिर उस प्रेम का आदान प्रदान कैसे होगा? माता यशोदा कैसे अपने वात्सल्य प्रेम को प्रदान कर सकती हैं यदि वो सोचने लगेंगी कि ये कृष्ण जो है ये भगवान है? इसलिए यशोदा माता के वात्सल्य भाव को बनाए रखने के लिए और श्री कृष्ण को इस वात्सल्य प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए, इस रस का स्वाद लेने के लिए, ये आवश्यक है कि माता यशोदा ये भूल जाए कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। तो ये एक उदाहरण है, ऐसे विस्मयकारी कार्य भगवान करते हैं जिससे कि कुंती महारानी जैसे भक्त भी भ्रमित हो जाते हैं। तो इस लीला से हम जान सकते हैं कि इस भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान होते हुए भी एक साथ में वो अपने भक्तों के हाथों में एक खिलौना या कठपुतली बन जाते हैं। जब श्री कृष्ण अपनी बाल लीला करते थे वृंदावन में, तो गोपियां उनको कभी कभी एक लड्डू देती थी, कभी एक कोई मिठाई देती थी और कहते थे चलो अभी लड्डू ले लो कृष्ण, अभी नृत्य करो, और श्री कृष्ण नाचने लग जाते और गोपियां ताली बजाती, गीत गाती, और उनके हाथ में बिल्कुल श्री कृष्ण कठपुतली बन गए। तो ऐसे गोपियों जैसे शुद्ध भक्त जो हैं, वो केवल शुद्ध प्रेम के द्वारा प्रेरित होकर ऐसे श्री कृष्ण की सेवा करते हैं और भगवान के स्थान को, श्री कृष्ण के भगवत्ता को भूल जाते हैं। और भगवान भी इसी तरह के शुद्ध सेवा को स्वीकार करना पसंद करते हैं, बजाय कि ऐसी सेवा जिसमें कि भक्त उनके भगवत्ता को जाने और भगवत्ता की स्तुति करें। माता यशोदा ने कभी श्री कृष्ण की भगवत्ता की स्तुति नहीं की, कुंती महारानी ने की। इसलिए माता यशोदा श्रेष्ठ है। तो माता यशोदा जैसे वृंदावन के भक्त होते हैं, जानबूझकर भगवान की माया शक्ति जो है उनकी आंखें, उनके हृदय के ऊपर ये एक प्रेम का पर्दा डाल देते हैं, जिसके द्वारा वो समझ नहीं सकते हैं कृष्ण के भगवत्ता को। आम तौर से जब भगवान को पूजा जाता है दुनिया भर में, बल्कि ब्रह्मांड भर में, तो एक ऐश्वर्य के भाव से पूजा जाता है। परंतु भगवान ऐसे ऐश्वर्यशाली पूजा से, उपासना से इतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितना कि वो तब होते हैं जब भक्त अपने आप को भगवान से श्रेष्ठ समझकर भगवान से प्रेम करता है। और आचार्यों ने ऐसे भी कहा है, स्वयं प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जैसे देवताओं द्वारा पुरुष सूक्त प्रार्थना इत्यादि है, भगवान ग्रहण तो कर लेते हैं, परंतु माता यशोदा की डांट, अन्य गोपियों की डांट, उनके ग्वाल बाल मित्रों की धमकियां, इनसे भगवान श्री कृष्ण को ज्यादा आनंद मिलता है। केवल पुरुष सूक्त सुनने से, भगवान की भगवत्ता का गुणगान करने में इतना आनंद भगवान को नहीं आता है। इसलिए भगवान ऐसे लीला यहां पर करते हैं। और इस लीला में, दामोदर लीला में, हम देखते हैं कि माता यशोदा के सामने भगवान श्री कृष्ण ने अधीनता का एक अद्वितीय प्रदर्शन किया कि कैसे भगवान श्री कृष्ण जो इतने शक्तिशाली सर्वशक्तिमान हैं, अपने भक्तों के सामने कैसे निस्सहाय बन के एक कठपुतली के समान हो सकते हैं, बल्कि वो डर जाते हैं, उनके आंखों से आंसू आने लगते हैं। ऐसा चित्र जो है ये कुंती महारानी के मन में है जबकि वो ये श्लोक कह रही है, और इस चित्र को मन में रख के वो पूज रही हैं। और इसमें, इस श्लोक में वास्तव में श्री कृष्ण के गुणगान से अधिक माता यशोदा का गुणगान हो रहा है, क्योंकि माता, क्योंकि कुंती महारानी आश्चर्यचकित हैं कि माता यशोदा की भक्ति कितनी अद्भुत है कि स्वयं भगवान अब डर गए हैं और उनके आंखों में आंसू आ गए हैं। तो यदि श्री कृष्ण वास्तव में डरे नहीं होते तो क्या श्री कुंती महारानी कहती कि मैं मोहित हो गई हूं, सा मां विमोहयति, क्या वो ऐसा कहती? नहीं। तो क्योंकि कुंती महारानी विमोहित हो गई हैं कृष्ण के डरे हुए अवस्था को देखकर, हम जान सकते हैं कि श्री कृष्ण वास्तव में डरे हैं। जब हम समझते हैं कि श्री कृष्ण वास्तव में डरे हैं, तो हम ये भी जान सकते हैं कि श्री कृष्ण अपनी भगवत्ता को भूल चुके हैं। इसलिए वृंदावन में दोनों ही भगवान के भगवत्ता को भूल जाते हैं, भगवान के भक्त और स्वयं भगवान। और ये क्यों होना है, क्यों होता है? क्योंकि वृंदावन के प्रेम के रस का आस्वादन करने के लिए ये आवश्यक है। जैसे ही भगवत्ता का ज्ञान या ऐश्वर्य ज्ञान आ जाता है तब मजा वृंदावन में किरकिरा हो जाता है। तो भगवान के भक्त भूल जाते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है, ये चलो बात हम समझ सकते हैं, परंतु ये सुनकर शायद हमें आश्चर्य होगा कि कभी कभी भगवान भी भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूं। हाँ, कभी कभी जब आवश्यकता पड़ती है, जैसे जब कोई असुर आते हैं या देवता ही असुर के समान कार्य करते हैं, जैसे इंद्रदेव ने किया, मूसलधार वर्षा वर्षाकर वृंदावन के ऊपर, जिसके द्वारा श्री कृष्ण को गोवर्धन पर्वत धारण करना पड़ा, उस समय भगवान श्री कृष्ण की सर्वज्ञता प्रकट हो जाती है। और फिर भगवान गोवर्धन पर्वत जैसे उठाना जैसे कार्य करते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण अपने नरलीला भाव को प्रकट करते हैं, एक साधारण बच्चे की तरह सबको मुग्ध कर देते हैं, अपने ऐश्वर्य को प्रदर्शित नहीं करते हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि श्री कृष्ण के अंदर ऐश्वर्य नहीं है। ऐश्वर्य है, परंतु श्री कृष्ण उसको ढक के रखते हैं। और श्री कृष्ण द्वारा, उनकी लीला शक्ति द्वारा श्री कृष्ण के अपने ऐश्वर्य का ज्ञान भी ढका जाता है, लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है रस के वृद्धि के लिए, तब भगवान की लीला शक्ति पुनः भगवान के सर्वज्ञता को प्रकट करने के लिए प्रेरित करती है। फिर भगवान श्री कृष्ण पुनः ऐसे कोई अद्भुत कार्य करते हैं, अपने ईश्वर भाव को प्रकट करते हैं। परंतु जैसे हम कल या परसों चर्चा कर रहे थे कि ऐसे अद्भुत कार्य, ऐश्वर्यशाली कार्य प्रकट करने के बाद भी माता यशोदा का वात्सल्य भाव कम नहीं हुआ। गोवर्धन पर्वत कृष्ण ने धारण नहीं उठाया, नहीं, ये तो मेरे पति नंद महाराज ने उठाया। ऐसे नंद माता यशोदा की धारणा थी कि छोटा बच्चा भले कैसे उठा सकता है। हाँ, माता यशोदा ये भूल गए कि एक बड़ा आदमी भी कैसे उठा सकता है, इतना बड़ा पहाड़ कौन उठा सकता है। तो ऐसे है भगवान श्री कृष्ण की सुंदर लीलाएं, जहां की वो दोनों भगवान और भगवान के भक्त भूल जाते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है। फिर ये दूसरा प्रश्न आता है, यदि भगवान श्री कृष्ण भूल जाते हैं कि वो स्वयं भगवान है, तो फिर उनमें और एक साधारण बद्ध जीव में अंतर क्या है? एक साधारण बद्ध जीव भी भूल जाता है या नहीं जानता है कि श्री कृष्ण भगवान है। इसका उत्तर ये है कि साधारण जीव में, जो बद्ध अवस्था में है इस भौतिक जगत में, जो कि अज्ञान के अंधकार में है, उसमें और माता यशोदा जैसे नित्य पार्षद भक्तों में अंतर यह है कि साधारण भक्त जो होते हैं वो भगवान की भौतिक माया शक्ति के अधीन होते हैं। ऐसे विस्मृति से वो भगवान से और दूर चले जाते हैं, भगवान को और भी भूलते जाते हैं, और ऐसे कार्य करते हैं जो घने अपराध होते हैं, पाप होते हैं, उनके हृदय में प्रेम नहीं होता भगवान के प्रति। परंतु यशोदा माता जैसे जो भक्त हैं, उनकी आंखों के ऊपर, उनके हृदय के ऊपर योग माया द्वारा एक पर्दा होता है, जिसके द्वारा वो तो भूल जाते हैं कि श्री कृष्ण भगवान हैं, परंतु ऐसे विस्मृति से उनके हृदय का प्रेम बढ़ते जाता है, कम नहीं होता है। तो वही चिन्मय चित्त शक्ति जो कि कृष्ण के भक्तों के आंखों के सामने एक प्रेम का पर्दा डाल देती है, वही चित्त शक्ति, लीला शक्ति, स्वरूप शक्ति इत्यादि, जो कि भगवान की अंतरंगा शक्ति है, भगवान को भुला देती है अपने भगवत्ता के संबंध में। और जब आवश्यकता पड़ती है तो स्वयं फिर ये सर्वज्ञता प्रकट हो जाता है भगवान का। तो ऐसे सब सूक्ष्म बातें हैं कृष्ण भगवान के लीला में, और लोग इतने आसानी से कहते हैं हम श्री कृष्ण को जानते हैं। अरे कैसे जानते हैं, श्री कृष्ण इतने गुह्य तत्व है, बड़े ब्रह्मा जी जैसे सृष्टि कर्ता भी नहीं जान सकते हैं श्री कृष्ण को, विशेष करके वृंदावन के श्री कृष्ण, क्योंकि ईश्वर भाव और नरलीला भाव का इस तरह से प्रदर्शन बीच बीच में होता है कि ब्रह्मा जी भी भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए हम कितने भाग्यशाली हैं कि प्रभुपाद जी ने ये सारा खुलासा करके दिया है, इस रहस्य का खुलासा करके दिया है अपने ग्रंथों के द्वारा, अपने उपदेशों के द्वारा, अपने संस्था और अपने भक्तों के द्वारा। ये हमारा अहो सौभाग्य है कि आज हम उस गुह्यतम रहस्य को समझ पाने का अवसर पा रहे हैं, जो कि ब्रह्मा जी शिव जी आदि देवताओं को भी के लिए भी बहुत दुर्लभ है। तो इसी दृश्य को ध्यान में रखते हुए सत्यव्रत मुनि ने दामोदर अष्टक में अपना दूसरा श्लोक कहा है। आपको याद होगा कि कल पहले श्लोक की चर्चा हमने की थी दामोदर अष्टकम की, अब दूसरे श्लोक का पाठ करेंगे। तो मेरे पीछे आप कहिएगा,
रुदन्तं मुहुर्नेत्र युग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकम्प त्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम्
तो सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं रुदन्तं मुहुर, अब भगवान श्री कृष्ण रो रहे हैं, कराम्भोज युग्मेन सातंक नेत्रम, नेत्र युग्मं मृजन्तम्, करामभोज युग्मेन युग्मं मृजन्तम्, तो अपने दोनों हाथों से कर कमलों से वो अपने दोनों कान अपने दोनों आंखों में वो ऐसे ऐसे मरोड़ रहे हैं जैसे कि बच्चे करते जब वो डर जाते हैं रोना चाहते हैं, तो वैसे श्री कृष्ण कर रहे हैं और रो रहे हैं। इस दृश्य को सत्यव्रत मुनि अपने मन में रख रहे हैं और इसके बारे में कह रहे हैं। मुहु श्वास और रोते रहे, उनकी सांस जो है वो थोड़ी भारी हो गई है, जैसे जब कोई बच्चा रोता है तो उसकी सांस भी भारी होने लगती है। त्रिरेखांक कंठ, उनके कंठ में तीन रेखाएं हैं एक शंख के समान, जिसके द्वारा उनका सौंदर्य और भी बढ़ जाता है। सित ग्रैव दामोदरम दामोदरम भक्तिबद्धम, और उनके गले में जो मोतियों की माला आती है वो भी कांप रही है, क्योंकि श्री कृष्ण भी इस तरह से भारी सांस ले रहे हैं। तो ऐसे दामोदर जो बांधे जाते हैं भक्ति से, ऐसे दामोदर का मैं स्मरण कर रहा हूं, सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं। तो इससे भगवान की भक्त वश्यता के गुण प्रकट होते हैं कि किस तरह से भगवान न केवल भक्त वत्सल है, भक्त वत्सलता का गुण तो है ही, परंतु भक्त वश्यता का गुण भी है कि वो अपने भक्त के वश में आ जाते हैं, भक्त के अधीन हो जाते हैं। और माता यशोदा के द्वारा ऐसे बांधे जाने की लीला या पकड़े जाने की लीला ये बहुत ही विशेष है। इसमें भी लीला विशेष है, बहुत बड़ा सौंदर्य है इसमें। तो खैर ऐसे सुखदेव गोस्वामी यहां इस सुंदर लीला का आगे वर्णन करते हैं कि माता यशोदा सदैव तीव्र वात्सल्य भाव से इतने युक्त रहती थीं कि उनको पता नहीं होता था कि श्री कृष्ण कौन है और श्री कृष्ण वास्तव में कितने शक्तिशाली हैं। और यदि कोई उन्हें बताता भी तो उनको परवाह नहीं थी, वो जानने की इच्छा भी नहीं रखती यदि कोई बताना चाहता कि तुम्हारा पुत्र कितना शक्तिशाली है। इतना तीव्र था उनका वात्सल्य प्रेम। इसलिए जब उन्होंने देखा कि उनका पुत्र बहुत भयभीत हो गया है तो फिर उन्होंने अपनी छड़ी फेंक दी और सोचा कि चलो अब इसे हमें बांध लेना चाहिए ताकि और कोई हरकत या शरारत ये नहीं करे। वैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि माता यशोदा श्री कृष्ण को इसलिए बांधना चाहती थी कि वो डर रही थी कि कहीं ये लड़का इतना चंचल और नटखट है, कहीं डर के मारे घर छोड़कर कहीं चले जाए और कहीं उसको हानि न पहुंच जाए। इसलिए माता यशोदा ने ऐसे कर लिया, उनको बांधने की तैयारी कर ली। प्रभुपाद जी कहते हैं कि माता यशोदा को सुनने की इच्छा नहीं थी कि कृष्ण कौन है और कृष्ण की शक्ति का विस्तार कैसे संपूर्ण सृष्टि में होता है। ये एक उदाहरण है वृंदावन के शुद्ध प्रेम का, परंतु द्वारका मथुरा आदि में ऐसे नहीं होता है। जब माता यशोदा छड़ी लेकर आई थी और श्री कृष्ण ने छड़ी को देखा तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि श्री कृष्ण ने कहा नहीं नहीं मुझे मारो नहीं है माते। तो श्री कृष्ण के डर को देखकर माता यशोदा का हृदय पिघल गया और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है फिर ये बताओ कि तुमने वो दही का मटका है उसे क्यों तोड़ा। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं और कभी नहीं करूंगा और कभी नहीं करूंगा डर के मारे। साधारण तौर से पाप करने के बाद लोग भगवान के सामने आते हैं ऐसे ऐसे करते हैं और नहीं करेंगे पाप और बस और नहीं करेंगे। जब हम गलती करते हैं तो भगवान के सामने आके कहते हैं और नहीं करेंगे और नहीं, फिर से कर देते हैं वो दूसरी बात है, लेकिन कम से कम भगवान के सामने आते हैं और कहते हैं नहीं करेंगे। कोई ऐसे करते हैं, कोई ऊपर बैठक करते हैं ऐसे करते हैं, नहीं करेंगे नहीं करेंगे। तो अब भगवान माता यशोदा के सामने आके कहते हैं नहीं करूंगा नहीं करूंगा, अब ये ऐसे गुनाह ऐसे अपराध में और कभी नहीं करूंगा। और कहां ऐसे दृश्य देखने में मिलता है या सुनने में भी मिलता है कि भगवान की ऐसी दशा, या ते दशा अश्रु कलिल संभ्रमाक्षम, जैसे कुंती महारानी कहते। इसलिए तो कुंती माने भ्रमित हुई हैं, ऐसी कोई छोटी साधारण बात तो थी नहीं। तो खैर फिर सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि श्री कृष्ण परम सत्य हैं, उनकी ना तो कोई शुरुआत है ना उनका कोई अंत है, उनका कोई बाह्य और आंतरिक कोई अवस्था नहीं है, सब कुछ श्री कृष्ण के अंदर ही है। श्री कृष्ण से स्वतंत्र कोई वस्तु नहीं है ना कोई व्यक्ति है, श्री कृष्ण के आगे ना कुछ है ना पीछे कुछ है, सब कुछ श्री कृष्ण ही है या श्री कृष्ण की शक्ति है। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण सर्वव्यापी है और क्योंकि वो काल शक्ति के प्रभाव के अंतर्गत नहीं आते हैं इसलिए भूत वर्तमान और भविष्य का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता है। हम सब इस दुनिया में रहते हुए काल शक्ति के अधीन होते हैं, इसलिए हमारे लिए अंतर होता है भूतकाल में वर्तमान काल में और भविष्य काल में, परंतु श्री कृष्ण के लिए ऐसे कोई अंतर नहीं है। कारण और फल इसमें अंतर होता है परंतु परम सत्य के लिए ऐसे कोई अंतर नहीं है। और वही अव्यक्त व्यक्ति जो कि अधोक्षज हैं, जो हमारे इंद्रियों के परे हैं, जिनको साधारण इंद्रियों से, स्थूल ग्राह्य इंद्रियों से देखा या समझा नहीं जाता, अब वो परम सत्य अधोक्षज अब एक साधारण बच्चे के रूप में प्रकट हुए हैं और माता यशोदा उनको अपना पुत्र समझ रही हैं और उन्होंने अभी श्री कृष्ण को उखल के साथ बांधने की तैयारी वो अब कर रहे हैं। तो ये अद्भुत दृश्य, सुखदेव गोस्वामी इतनी लंबी बात क्यों कहते हैं, क्योंकि वो हम सबको याद दिलाना चाहते हैं कि देखो कि साधारण बच्चे को बांधने की या दंड देने की बात नहीं है, ये स्वयं भगवान है, इसलिए तो ये लीला इतनी मधुर हो जाती है। जब नर लीला के साथ साथ ऐश्वर्य लीला आ जाती है और जब भक्त के हृदय में नरलीला भाव का घटन नहीं होता है, तब माधुरी और भी बढ़ जाता है। वास्तव में माता यशोदा ने जो रस्सी लेकर श्री कृष्ण को बांध लिया, वो केवल रस्सी से नहीं बांधा, उनके शुद्ध वात्सल्य प्रेम से बांध लिया। और श्री कृष्ण जो कि सर्वव्यापी भगवान है, परम सत्य है, जो कि ब्रह्मा जी से लेकर एक घास के तिनके को सभी को बद्ध अवस्था में बांध के रखते हैं अपने कड़े नियमों के द्वारा, वो आज एक साधारण या बाह्य दृष्टि से दिखने वाली साधारण गांव की महिला ने उनको बांध लिया है। तो भगवान श्री कृष्ण अपने माता के असाधारण प्रेम से बंधे गए, क्योंकि माता यशोदा ने केवल श्री कृष्ण को अपना पुत्र समझा। श्रील प्रभुपाद जी यहां तात्पर्य में बताते हैं कि ब्रह्म शब्द का तात्पर्य अभिप्राय है सबसे महान, और भगवान श्री कृष्ण महतो महियान, वो महान व्यक्तियों में से सबसे महान है, असीमित है, सर्वव्यापी है। तो कैसे संभव है कि ऐसे असीमित व्यक्ति को किसी रस्सी के द्वारा बांध लिया जा सकता है? जब हम किसी चीज को बांधते हैं तो सबसे पहले रस्सी लेकर उसका नाप करना लेना पड़ता है, उसे घुमाना पड़ता है, फिर उसका नाप आता है, फिर उसको बांध सकते हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण जिनके उदर में अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, सारी सृष्टि उनके उदर में है, तो ऐसे भगवान के उदर को कैसे बांधा जा सकता है, ऐसे उदर को जिसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत की कोई सीमा नहीं है, भौतिक जगत भी इतना विशाल है कि इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं, और ऐसे असीमित उदर को माता यशोदा ने बांध लिया है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को जिनके अंदर और बाहर में कोई अंतर नहीं है, ऐसे श्री कृष्ण को उन्होंने बांध लिया है। ये बहुत आश्चर्यचकित कराने वाली बात है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इससे हम जान सकते हैं कि केवल ये शुद्ध प्रेम के स्तर पर संभव है, और इसी तरह से इस लीला को हम समझ सकते हैं, अन्यथा हम नहीं जान पाएंगे। अब एक अद्भुत घटना और हुई। अब तक तो केवल नर लीला भाव में थे भगवान श्री कृष्ण, अब धीरे से अपने ईश्वर भाव को भी प्रकट करा रहे हैं, और हम देखेंगे कि जब ईश्वर भाव को प्रकट करेंगे भगवान श्री कृष्ण, माता यशोदा के अंदर जो वात्सल्य भाव है उसके घटन नहीं होता है। तो किस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अपने ईश्वर भाव को प्रकट किया? जब माता यशोदा ने एक रस्सी लेकर उखल से बांधने का प्रयास किया श्री कृष्ण को, तो उन्होंने देखा कि रस्सी दो उंगली कम पड़ रही है, और आश्चर्यचकित हो गई कि ठीक है, तो और दूसरी रस्सी ले आती हूं। तो दूसरी रस्सी ले ली माता यशोदा ने, दूसरी रस्सी लेकर पहले रस्सी से जोड़ दिया, और फिर से श्री कृष्ण को उखल से बांधने का प्रयास किया। और अहो आश्चर्यम, क्या हुआ, इस बार भी ये रस्सी कम पड़ गई। कितने कम पड़ गई कि बिल्कुल दो उंगलियों से। माता यशोदा ने सोचा, अरे ये तो कैसे हो सकता है, ठीक है कोई बात नहीं, और एक रस्सी लाती हूं। तो और एक रस्सी लाई। अब तक हुआ ये कि सारे व्रज में खबर फैल गई। क्या खबर फैली कि माता यशोदा श्री कृष्ण को दंड दे रही है, और कैसा दंड दे रही है, उखल से बांध रही है रस्सी लेकर। तो मजा देखने के लिए सारे गोपियां आ गईं और सब आके प्रसन्न चित से देख रही थी। वात्सल्य भाव से उनका हृदय भी भर गया था। अब उन्हें क्या पता कि और एक अद्भुत लीला वो देखने वाले हैं। तो आई तो माता यशोदा तीसरे रस्सी को लेने गई, और जब तीसरे रस्सी लाके बांध दी दूसरे रस्सी से, फिर भी आश्चर्य कि रस्सी जो है दो उंगली कम पड़ रही है। और अब गोपियां जो है वो हंसने लग गईं कि ये क्या चमत्कार हो रहा है यशोदा। तो यशोदा ने हार नहीं मानी, हौसला नहीं खोया। तो हंसते हंसते गोपियां तो समझ नहीं पा रही थी कि ये क्यों हो रहा है, परंतु कुछ चमत्कार हो रहा है उनको पता था। तो हंस हंस के सारे गोपियां, एक गोपी गई अपने घर में रस्सी लाने के लिए, अरे यशोदा मेरे घर में भी है रस्सी, मैं ला रही हूं, ले लो। तो रस्सी लाके दे दी। तो माता यशोदा ने अपने घर में जितने भी रस्सियां थी उनको बांध बांध के समाप्त कर लिया, फिर भी हर बार दो उंगली कम। फिर जो गोपियां थी वो भी अपने घर से रस्सियां लाने लगी। माता यशोदा ने उनको भी बांधना शुरू किया। अब पसीने छूट गए थे माता यशोदा की, थक रही थी। बांधते बांधते रस्सियों को जोड़ते जोड़ते तनाव भी हो रहा था, आश्चर्य भी हो रहा था, मन भी चकरा रहा था कि हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है ये सब। फिर सारे व्रज के अंदर जितने भी रस्सियां थी वो सब आ रही थी एक के बाद एक। गोपियां अपने घरों से रस्सी लेकर आ रही थी और माता यशोदा बांधे जा रही थी। गोपियां सब खड़े रहकर इस अद्भुत दृश्य को देखकर हंसते जा रही थी। अरे यशोदा तुम्हारा लाडला कान्हा क्या है, ये कुछ पता नहीं चल रहा है, बहुत अद्भुत बच्चा है तुम्हारा कान्हा। तो वैसे भगवान श्री कृष्ण ने तो अपनी अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन तो कर ही दिया था पहले, जबकि उन्होंने शकटासुर तृणावर्त पूतना आदि का वध किया था। और इस समय अपनी और एक विशेष विभूति का प्रदर्शन श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा को कर रहे थे। और वो मानो के कहना चाह रहे थे कि जब तक कि मैं नहीं मानता हूं तब तक आप मुझे नहीं बांध सकते। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं उनकी टीका में कि श्री कृष्ण सोच रहे थे कि आप मुझे नहीं बांध सकते, क्योंकि मुझे माखन चोरी करने के और मेरे मित्रों के साथ क्रीड़ा करने के कार्य भी करने हैं, और आप यदि मुझे बांध दोगे उखल से तो माखन चोरी कैसे करूंगा मैं। इसलिए श्री कृष्ण बंध जाने के लिए तैयार नहीं हुए। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण की जो विभूति शक्ति है, जिस शक्ति के द्वारा उनके ऐश्वर्य का प्रदर्शन होता है, उनकी विभूति शक्ति ने, उनके सत्य संकल्प शक्ति, जो वो शक्ति है जिससे कि भगवान की हर इच्छा पूर्ण होती है, वो प्रकट हो गई। और इसलिए विभूति शक्ति और सत्य संकल्प शक्ति के द्वारा ये रस्सियां, जितने भी रस्सियां आ रही थीं, वो दो उंगली कम पड़ती गईं। अब तो सारा ब्रज वहां आके खड़ा हो गया। और जब श्री कृष्ण ने देखा अंततः कि माता यशोदा बहुत परिश्रम के द्वारा थक रही हैं, तो उनका हृदय पिघल गया। कृपा की उन्होंने। यहां सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि बाकी गोपियां वहां पर आईं, सब हसमुख चेहरे से इस दृश्य को देख रही थीं। अब माता यशोदा भी हंसने लगे कि ये क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सभी लोग विस्मिताभवत, विस्मित हो गए थे, सारे गोपियां जो खड़े थे श्री कृष्ण के साथ में। आचार्यों ने यह भी बतलाया है कि दो उंगली जो कम पड़ गए रस्सियों में श्री कृष्ण को बांधने के लिए, इनका अभिप्राय या तात्पर्य क्या है, इसका महत्व क्या है। वैसे भगवान को प्राप्त किया जाता है भगवान की कृपा से। भक्ति मार्ग में कृपा को बहुत महत्व दिया जाता है। भक्ति का आधार ही है कृपा। कृपा के बिना किसी के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता है। इसलिए भक्ति मार्ग अन्य मार्गों की तुलना में श्रेष्ठ है, क्योंकि भक्ति मार्ग कृपा पर आधारित है। भक्त भगवान के कृपा पर निर्भर होता है, इसलिए भक्त सफल होता है। अन्य मार्गों में जैसे योग मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, इसमें जो साधक होते हैं, योगी होते हैं, वो केवल अपने तपस्या पर, अपने ज्ञान पर, अपने बुद्धि पर निर्भर होते हैं। इंद्रियों को वश में करने के लिए, परम सत्य की को प्राप्त करने के लिए, और इसलिए उनको भगवान की कृपा नहीं मिलती। भगवान पर निर्भर नहीं होते, केवल अपने योग्यता पर निर्भर होते हैं। और चाहे वो कितने भी योग्य क्यों न हो, क्योंकि वो भगवान के ऊपर निर्भर नहीं है, इसलिए वो सफल नहीं होते हैं। येन्ये रविनदाक्ष विमुक्त मानिनस्त्वयस्त भावाद विशुद्ध बुद्धयः आरोह्य कृच्छ्रेन परम पदम ततः पतन्त्यतो नादृत युष्मदङ्घ्रयः। तो ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवत में प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हे भगवान कृष्ण, हे अरविंदाक्ष कमल नयन श्री कृष्ण, जो आपके चरण कमलों का अनादर करते हैं, जो आपके व्यक्तित्व को, आपके रूप को नकारते हैं, जो आपके चरण कमलों के प्रति अपराध करते हैं, आपकी भक्ति न करके, आपकी सेवा न करके, अपने आप को भगवान मान के, केवल अपने शक्ति आदि के ऊपर निर्भर रह के, भले वो कितने ही तपस्या क्यों न करे, आरोही कृच्छ्रेन परम पदम ततः पतन्ति अधः, भले वो अपने आप को कड़ी तपस्या करने के बाद भी ऊंचा पहुंचा हुआ समझ लें, फिर भी पतन हो जाता है उनका, क्योंकि वो आपके चरण कमलों का अनादर करते हैं। विमुक्त मानिन है, वो अपने आप को विमुक्त समझते हैं परंतु है नहीं। त्वयस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धयः, उनकी बुद्धि वास्तव में पूरी तरह से शुद्ध नहीं होती है। किनकी बुद्धि शुद्ध होती है? जो अपने आप को निस्सहाय समझ के भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों के आश्रय को स्वीकार करते हैं और उनके कृपा के ऊपर निर्भर रहते हैं सदैव, ऐसे व्यक्तियों के, भाग्यशाली लोगों के मन में, क्या उनके जीवन में परम कल्याण का उदय होता है। भक्ति के रूप में कल्याण उनके हृदय में आ जाता है। तो कृपा का स्थान भक्तों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु फिर यदि कोई व्यक्ति सोचे, मैं तो केवल भगवान के कृपा के ऊपर निर्भर रहूंगा और बैठा रहूंगा, टीवी भी देखूंगा, सिनेमा भी जाऊंगा, इधर उधर खाने पीने जाऊंगा, मौज मस्ती करूंगा, हाँ मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान की कृपा मुझे चाहिए, बस राह देख रहा हूं कब भगवान की कृपा आएगी, तो फिर नहीं, भगवान की कृपा नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हमें प्रयास करना है। जो अन्य योगी जन हैं, वो केवल अपने प्रयास के ऊपर निर्भर रहते हैं, इसलिए असफल हो जाते हैं, क्योंकि भगवान की कृपा को ध्यान में नहीं रखते हैं। दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति सोचे कि केवल प्रयास किए बिना मैं कृपा की प्रतीक्षा करूंगा, तो वैसे भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। भगवान कहेंगे, अरे कुछ तो करो, कुछ तो प्रयास करना चाहिए। इसलिए जब भक्त प्रयास करता है, और इस प्रयास को साधन भक्ति कहते हैं। जैसे हम जप करते हैं, ये प्रयास है ना, प्रतिदिन 16 माला कम से कम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना काफी प्रयास करना पड़ता है। कभी नींद आती है, कभी मन भटकता है, फिर भी भक्त दृढ़ता से करते रहता है, नहीं मुझे करना है। सुबह उठ के मंदिर में आना पड़ता है, कीर्तन में शामिल होना पड़ता है, ध्यान पूर्वक ऐसे प्रवचन में बैठना पड़ता है, ये भी काफी बड़ा प्रयास है। साधारण लोग ऐसे बैठ नहीं सकते शांति से, तो ये भी बहुत बड़ा प्रयास होता है। बाहर के प्रलोभनों को ध्यान में नहीं देना, उनसे संघर्ष करना, बाहर के वस्तुओं का भोग करने की इच्छा मन में होती है फिर भी अपने आप को रोक लेना, कितना प्रयास होना चाहिए। तो यद्यपि केवल प्रयास से हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, फिर भी जितना हमसे हो सकता है यथाशक्ति हमें प्रयास करना चाहिए और साथ साथ भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर होना चाहिए। इसलिए जिन दो उंगलियों से वो रस्सियां कम पड़ गईं, वो भगवान की कृपा और भक्त के प्रयास के प्रतीक हैं। एक उंगली है भगवान की कृपा और दूसरी उंगली है भक्त का निजी प्रयास। जब दोनों होते हैं तब हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। पहले जब माता यशोदा प्रयास कर रही थी तो केवल उनका प्रयास था, इसलिए भगवान ने कहा जब तक मैं चाहता हूं तब मुझे नहीं बांध सकोगे माता, वो अपने मन में सोच रहे थे। तो भगवान ने कृपा नहीं दी थी, तब तक केवल माता यशोदा का प्रयास चल रहा था। परंतु जब माता यशोदा के प्रयास को देखकर, उनके थकावट को देखकर, उनके पसीनों को देखकर भगवान कृष्ण ने कृपा दे दी, ठीक है अब मैं बंधा जाऊंगा तुम्हारे द्वारा। उसी तरह से जब हम भी प्रयत्न कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, सोए जा रहे हैं, बैठे हैं, थक गए हैं, फिर भी आते हैं, फिर भी करते हैं, किसी न किसी तरह से भक्ति को छोड़ते नहीं हैं, जिद करके भक्ति करते हैं। चाहे प्रलोभन मन में कितने भी हों, चाहे कठिनाइयां कितने भी हों, स्थिरता से भक्ति करने में मन इधर उधर भटकने के बाद भी फिर से मन को खींच के, शरीर को खींच के लाते हैं मंदिर में, भगवान के चरणों में। जब बार बार ऐसे प्रयत्न करते रहेंगे, प्रतिदिन, दिन के बाद दिन, सारे आयु भर, हमारे जीवन भर जब करेंगे, तब भगवान कहेंगे हाँ इस भक्त के ऊपर मुझे कृपा करनी है, बेचारा इतना प्रयास कर रहा है तो मुझे कृपा करनी चाहिए। तब कृष्ण कृपा मिलेगी कृष्ण प्रेम के रूप में। इसलिए हमें निराश होकर भक्ति छोड़नी नहीं चाहिए। अरे 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, हम जप किए जा रहे हैं लेकिन कृष्ण प्रेम का कोई निशान नहीं, कोई लक्षण नहीं। नहीं, हमें निराश नहीं होना चाहिए, जैसे माता यशोदा निराश नहीं हुई, प्रयत्न करती रही, उसी तरह से भक्ति भाव से कृपा की प्रतीक्षा करते हुए हमें भगवान की सेवा करते रहना चाहिए। ये पूरा विश्वास होना चाहिए कि अवश्य हम एक दिन सफल होंगे, क्योंकि भगवान कृपालु हैं। हमें पूरा विश्वास है भगवान की कृपा में कि एक न एक दिन भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे, और तब तक हम सेवा करते रहेंगे और उसके बाद भी सेवा जारी रखेंगे। ये एक निरंतर करने होने वाली सेवा है, ऐसा नहीं कि परिपूर्णता प्राप्त करने के बाद सेवा छोड़ देंगे, नहीं। ये भगवत सेवा हमारा साधन है और हमारा साध्य भी है, साध्य अर्थात लक्ष्य। कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के बाद सेवा बंद नहीं होती है, बल्कि सेवा और भी शुद्ध और भी तीव्र होती है। तो ये है तात्पर्य इन दो उंगलियों का, जिससे कि रस्सियां कम पड़ रही थीं। तो ऐसे माता यशोदा के हाथों द्वारा यह चमत्कार हुआ, क्योंकि सैकड़ों फुट लंबे रस्सी भी वो कार्य नहीं कर पाई जो साधारण तौर से 2 फुट की रस्सी को कार्य करना चाहिए था। तो इसके द्वारा माता यशोदा ने उस समय सोचा होगा कि ये कैसे संभव है। फिर भी आश्चर्य की बात यह हुई कि भगवान श्री कृष्ण नहीं बंधे गए, और जब भगवान ने चाहा तब वो बंधे गए। आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब माता यशोदा ऐसे बहुत प्रयास कर रही थीं, तो शरीर में पसीना आ गया, उनके बालों में जो फूल थे वो सब नीचे गिरने लगे, और ऐसे अपने माता यशोदा के थकावट को देखकर कृपा यसीत स्वबंधने, कृपा उत्पन्न हुई भगवान के मन में, और उन्होंने सोचा कि ठीक है, अब मुझे बंध जाने के लिए तैयार होना चाहिए। और माता यशोदा इस तरह सफल हो गई श्री कृष्ण को बांधने के लिए। माता यशोदा की जय। ऐसे अद्भुत घटनाएं वृंदावन में होने लगी, और ये दामोदर लीला का महत्व ये है विशेष करके कि इससे हम सीख सकते हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण केवल अपने भक्तों के प्रेम के द्वारा बांध लिए जाते हैं, और इससे भगवान के मिठास को, भगवान के भक्ति की मिठास को और भी बढ़ाया जाता है। भक्त जितना और प्रेम करते हैं भगवान से, तो भगवान भी भक्तों के प्रति उतने ही अधीन हो जाते हैं, और इसलिए दोनों के बीच में जो संबंध है वो और भी मीठा हो जाता है। तो ये सारे दृश्य हम वृंदावन में देखते हैं। कल अंतिम दिन है, कल दामोदर लीला के अंतिम वर्णन के बारे में हम श्रवण करेंगे, और विशेष करके किस तरह से श्री कृष्ण ने नलकूवर और मणिग्रीव को मुक्त कराया उनके पेड़ योनि के शाप से, वो हम कल देखेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।